दिन भर तारीख 7 जून दिन गुरुवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को बताया भारत का महान सपूत, संघ मुख्यालय के कार्यक्रम में है मौजूद। कश्मीर दौरे पर गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराई बातचीत की पेशकश।
बातचीत सबसे हो सकती है, बातचीत के लिए लाइक माइंडेड होना जरूरी नहीं है लेकिन राइट माइंडेड होना जरूरी है।
और खास रिपोर्ट झारखंड के उस गांव से जिसे कहा जाता है मंदिरों का गांव।
ये जो हमारा तो धरोहर, भारत का धरोहर है, ये हमारा मलोटी गांव का नहीं, झारखंड का नहीं है, ये भारत का धरोहर है।
होंगे आपके पत्र भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रणब मुखर्जी आज नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक खास समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। इस समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ के अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। माना जाता है कि आरएसएस वैचारिक तौर पर भाजपा से जुड़ी है और इस कारण प्रणब मुखर्जी के भाषण पर सभी की नजरें हैं। भारत की जानी मानी पत्रकार बरखा दत्त ने कहा है कि उन्हें सरकार में मौजूद ताकतवर लोगों से धमकियां मिल रही हैं। टेलीविजन की जानी मानी प्रेजेंटर और संपादक बरखा दत्त ने ट्विटर पर लिखा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं कि उनके और उनके परिवार की निगरानी हो रही है और उन्हें बदनाम किया जाएगा ताकि उन्हें किसी तरह का नया कार्यक्रम शुरू करने से रोका जाए। उनके दावों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में रूस के हस्तक्षेप के सभी आरोप झूठे, बेबुनियाद हैं और ये एक मजाक है। पुतिन सरकारी टेलीविजन पर फोन के जरिए रूसी जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनसे किसी ने सवाल किया कि उन्हें हाल के दिनों का कौन सा चुटकुला याद है। हाल में जर्मनी के एक जाने माने अखबार ने लिखा कि अमरीकी राष्ट्रपति यूरोप को रूस के पक्ष में कर रहे हैं। इससे पहले का मजाक जिसमें कहा गया था कि रूस ने अमरीकी चुनावों में हस्तक्षेप किया है, उसे भी इसके साथ देखें तो ये मज़ेदार लगता है। हमने कथित तौर पर अमरीका के राष्ट्रपति चुनावों में हस्तक्षेप किया और इसके बदले में वो यूरोप को हमें सौंप रहे हैं। क्या मजाक है, इसे कोई चुटकुले से कम क्या कहेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने एक व्यक्ति हेनरी बेन ब्रेडा को अपने माता पिता और भाई के हत्या के आरोप में 3 बार आजीवन जेल की सजा सुनाई है। अपनी बहन पर हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल करने के लिए उन्हें 15 साल की सजा सुनाई गई है। घटना के वक्त हेनरी की उम्र 20 साल थी। केप टाउन में खचाखच भरी एक अदालत में न्यायाधीश सिराज देसाई ने कहा कि ये बर्बरता से की गई हत्याएं हैं। जिन निहत्थे लोगों को मारा गया और हमला कर घायल कर दिया गया, उन्हें मारने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये बेहद बर्बरता पूर्वक से की गई हत्याएं हैं। इतनी हिंसा और इतनी बुरी तरह के ये हमले जानबूझकर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए हैं। 3 लोगों की मौत उन घावों की वजह से हुई जो कुल्हाड़ी से उन्हें मिली। एक व्यक्ति बची तो है लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। हमलावर उन्हें मारना चाहते थे। हेनरी बेन ब्रेडा को सजा सुनाने वाले जज सिराज देसाई के शब्द। अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान के खिलाफ अपने अभियान पर अस्थाई लगाम लगाते हुए एक तरफा अल्पकालिक संघर्ष विराम की घोषणा की है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने टेलीविजन पर प्रसारित एक संदेश में कहा कि इस्लामिक स्टेट, अलकायदा जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी समूहों के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। ब्रसेल्स में हो रहे नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में नेटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने अफगानिस्तान की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान सरकार देश में जारी संघर्ष को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास कर रही है। कीनिया में अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस सप्ताह मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए एक छोटे विमान का मलबा मिल गया है। ये विमान खराब मौसम के कारण अबरडायर की पहाड़ियों में गुम हो गया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। तमाम निगाहें आज नागपुर पर हैं, खास तौर पर राजनीतिक हलकों में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नागपुर स्थित मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये कार्यक्रम है आरएसएस के प्रशिक्षण वर्ग का समापन सत्र। इस कार्यक्रम का आयोजन हर साल होता है, लेकिन इसकी पहले कभी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी आज हो रही है या इस दौर में हो रही है, और इसकी वजह पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी की मौजूदगी ही है। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी ने जब से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की मंजूरी दी, तब से ही राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई थी। कांग्रेस के तमाम नेता, जिनमें मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा भी शामिल हैं, उन्होंने प्रणब मुखर्जी को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने को लेकर नसीहत दी, जबकि आरएसएस ने इसी दौरान सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। इस बहस के बीच प्रणब मुखर्जी नागपुर पहुंच गए और फिलहाल वो आरएसएस के मंच पर मौजूद हैं। इस कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली और नागपुर से जुड़ रहे हैं संजय रमाकांत तिवारी। इंतजार है प्रणब मुखर्जी क्या बोलते हैं, इसको लेकर उत्सुकता है। पहले सीधे चलेंगे नागपुर और जानेंगे रमाकांत तिवारी से क्या कुछ हो रहा है फिलहाल वहां। रमाकांत तिवारी, बताइए हमारे श्रोताओं को।
जी, ये जो रेशम बाग इलाका है नागपुर का, पूर्वी नागपुर का, यहाँ पर ये जो मैदान है इसे भी रेशम बाग मैदान कहते हैं। यहाँ पर संघ के जो सारे बड़े कार्यक्रम हैं वो होते हैं। आज यहाँ पर जो भीड़ है, मैं आपको बता दूं, पिछले लगभग 20 वर्षों से मैं कवर करके आ रहा हूँ, लेकिन मैंने तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में इतनी भीड़ इसके पहले नहीं देखी थी। यहाँ तक आलम है कि लोग नीचे जमीन पर बैठे हैं और बिल्कुल सहजता से, सहजता तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के चेहरे पर भी दिख रही है। उनके चेहरे पर कोई ऐसे तनाव के भाव नहीं है जो हमने पिछले कुछ दिनों में मीडिया के,
यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो सवाल उठ रहे हैं उनकी शिकन कोई प्रणब मुखर्जी के चेहरे पर रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है जब वो डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक गए, वहां उन्होंने विजिटर बुक में उन्हें महान सपूत बताया। और क्या कुछ कहा उन्होंने या अभी तक उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी सामने आई है?
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया, हेडगेवार के निवास पर जब वो गए तो मैं भी वहां पर था, कुछ मीडिया के बाकी कर्मी भी थे, हम सब ने देखा कि जब वो दूसरी मंजिल से उतर रहे थे सीढ़ियों से, तो कुछ असहज हो गए। सीढ़ियां पुराने तरह की हैं, स्टाइल की हैं, नैरो हैं, तो उतरने समय उनका हाथ पकड़कर सरसंघ चालक ने उनको नीचे उतरने में सहयोग किया। तो कुल मिलाकर जो तालमेल है, जो आपसी संबंध है, वो दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना मीडिया में पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा था उसके ठीक विपरीत यहाँ पर एक उदार मतवादी और एक आपसी तालमेल वाली,
आपसी तालमेल दिख रहा है। रमाकांत तिवारी ये बता रहे हैं। रमाकांत तिवारी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फैसल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कांग्रेस की ओर से जो प्रतिक्रिया आ रही है और खासतौर पर जो रिएक्शन आया है, कांग्रेस ने कहा है कि हर भारतीय के लिए जानना और समझना जरूरी है कि संघ ने अतीत में किसका समर्थन किया है और ये आज क्या सोचता है। भारत के लोगों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के लिए इनकी विचारधारा कितनी विरोध वाली रही है। यानी कांग्रेस की लाइन साफ है, प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति हैं, आज वो कांग्रेस में नहीं है लेकिन कांग्रेस से रहे हैं और संघ के बारे में उनके एक विचार रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को?
देखिए, एक बात तो है कि कांग्रेस असहज है, और कांग्रेस नहीं बल्कि एक और भी ऐसा वर्ग है देश का जो असहज लग रहा है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल एक तरह से ये देखिए कि अभी के जो भी पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी ने जब से अध्यक्ष का पदभार संभाला है तो लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व ताकतों के खिलाफ वो बार बार बोलते रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरी बात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पूरे कार्यक्रम को जो है वो आरएसएस इस तरह से पेश करेगी कि देखिए, नेहरू और गांधी परिवार भले ही नहीं आना चाहता हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कुछ नहीं रखना चाहता हो नाता, लेकिन बाकी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता
उन्हें कोई दिक्कत नहीं,
उन्हें कोई दिक्कत इस बात।
मोहन भागवत अभी बोल रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, हम अपने श्रोताओं को एक छोटी सी क्लिप फैसल साहब सुनाना चाहते हैं। जी, क्या कहा उन्होंने?
ऐसे जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें संघ स्थापना के समय से हमारी ये परंपरा रही है कि देश के सज्जनों को हम आमंत्रित करते हैं, जिनको आना संभव है वो हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं, और यहाँ पर आते हैं, संघ का स्वरूप देखते हैं, अपने तरफ से अपनी कुछ बात कहते हैं। उस परंपरा के अनुसार ही आज का भी कार्यक्रम सरलता से सहज रीति से संपन्न हो रहा है, परंतु इस बार उसकी कुछ विशेष चर्चा चली।
जी मोहन भागवत कह रहे हैं कि ये परंपरा है कि बाहर के जो लोग जो संघ में लगातार नहीं आते रहते हैं उनको बुलाया जाता है इस तरह के कार्यक्रमों में। तो क्या प्रणब मुखर्जी का आना केवल आप इसी से जोड़ के देखेंगे या अगले साल चुनाव भी होने हैं? संघ खुद को सांस्कृतिक संगठन बताता है लेकिन प्रणब मुखर्जी का इस मौके पर वहाँ आना संदेश कुछ तो जाता है।
प्रणब मुखर्जी के जाने को उस रूप में नहीं देखा जा सकता क्योंकि प्रणब मुखर्जी कोई आम व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, एक कई बार दो बार तो बल्कि प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पद संभाला था। ये बात अलग है कि उनका जो है पूरा करियर कांग्रेस में रहा था और आरएसएस के जो संस्थापक थे केशव बली हडगवार, उनका भी जो है कांग्रेस से ही कार्य मतलब उनका करियर शुरू हुआ था।
जब 1925 में उन्होंने स्थापना की थी उससे पहले कांग्रेस के नेता,
कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे। ये बात अलग है कि जीना साहब भी एक बार एक समय कांग्रेस में ही हुआ करते थे, तो ये अजीब इत्तफाक है। लेकिन ये भी सही है कि बहुत सारे लोगों को हमेशा ये सवाल रहेगा जो कि उनकी एक जो एक आइडियोलॉजिकली है जो कुछ लोगों को अलग रखने की जो है वो अगर उसको उस तरह से भी देखा जाए तो उसको लेके हमेशा सवाल उठता रहेगा और गांधी का एक पूरा मामला तो वहां पर है।
सवाल कई हैं और सबसे बड़ा सवाल कि प्रणब मुखर्जी आज क्या बोलते हैं। रमाकांत तिवारी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या कोई जानकारी आ रही है किस लाइन पर होगा भाषण?
जी मैं आपको ये बता दूं कि हालांकि प्रणब मुखर्जी क्या बोलेंगे ये उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो खबरें हमारे तरफ संघ के सूत्रों की तरफ से आ रही हैं कि किस तरीके से ये बातें इस हद तक पहुंची कि उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया, जो संघ के सूत्र बता रहे हैं यदि उन पर विश्वास किया जाए, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, वो नवरात्रि में अपने पैतृक गाँव जाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और उनको शायद ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सामाजिक या जिस तरह से ताना बाना हो रहा है कुछ असहज स्थितियां हैं, ऐसा शायद उनको लग रहा है और इसलिए वो संघ के करीब आना चाह रहे हैं, ऐसा हालांकि संघ के सूत्र बता रहे हैं इसमें बहुत
ज्यादा सूत्रों का कहना है। प्रणब मुखर्जी क्या कहेंगे?
लेकिन एक अंतिम वाक्य मैं बता दूं कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेफ्यू हैं, भतीजे हैं अर्धेंदु बोस, उनको खास तौर पर यहाँ बुलाया गया है और वो इनवाइटीज में बैठे हैं, तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल वाला कुछ एंगल तो जरूर लगता है।
जी मौजूदगी सुनील शास्त्री की भी है जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं। हम लौटेंगे फैसल साहब आपके पास, लेकिन इसके बीच जब प्रणब मुखर्जी बोलेंगे हम वापस आएंगे, श्रोताओं को भी सुनवाएंगे अगर हमारे कार्यक्रम के बीच उन्होंने भाषण देना शुरू किया। इस बीच हम आगे दूसरी खबरों की ओर बढ़ते हैं।
बीबीसी इंडिया बोल। कर्नाटक और यूपी के कैराना में एकजुट विपक्ष ने रोका बीजेपी का रास्ता, क्या 2019 में काम करेगा विपक्षी एकजुटता का फॉर्मूला या 2014 में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत दिलाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी 2019 में भी दोहराएंगे कमाल? इस बार इंडिया बोल में इन सवालों पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 9 जून शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान के खिलाफ अपने अभियान पर एकतरफा रोक लगाने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने टीवी पर प्रसारित बयान में इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपति गनी ने क्या कहा वो सुनिए। अशरफ गनी कह रहे थे मैं रमजान के 27वें दिन यानी 12 जून से ईद के 5वें दिन यानी 19 जून तक संघर्ष विराम का ऐलान करना चाहता हूं। मैं देश के सभी सुरक्षा बलों को निर्देश देता हूं कि वो अफगान तालिबान के खिलाफ आक्रामक अभियान पर रोक लगा दें। दाएश, अलकायदा और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी नेटवर्क के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। आने वाले हफ्तों में संघर्ष विराम को लेकर ज्यादा जानकारी दी जाएगी। अशरफ गनी ने साफ किया कि संघर्ष विराम सिर्फ तालिबान के लिए है, दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तालिबान ने अभी सरकार के ऐलान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं अफगानिस्तान सरकार के आलोचकों का कहना है कि सरकार के इस कदम से कोई खास बदलाव नहीं आएगा। और अब एक खास रिपोर्ट। झारखंड के दुमका जिले में एक गांव है मलूटी। यहां सैकड़ों बरस पहले 108 मंदिर बनवाए गए थे और इन मंदिरों की वजह से इस गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है। फिलहाल यहां करीब 70 मंदिर बचे हैं और सरकार उनका जीर्णोद्धार करा रही है। इरादा पर्यटन को बढ़ावा देने का है, लेकिन इस कोशिश से स्थानीय लोग नाराज हैं। क्या है इसकी वजह, जानते हैं रवि प्रकाश की इस रिपोर्ट में।
मैं मलूटी आया हूं और यह आवाज़ यहां के मौलिक्षा मंदिर में आरती की है। यहां पारंपरिक बंगाली पद्धति से पूजा की जा रही है, ढाक बज रहे हैं और घंटियां भी। यह मंदिर उन 108 मंदिरों में से एक है जो कई सौ साल पहले यहां के जमींदार परिवार द्वारा बनवाए गए। अब यहां सिर्फ 72 मंदिर मौजूद हैं, उनकी हालत भी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। इसके बावजूद लोगों की इनमें आस्था है और यहां रोज पूजा होती है। इस गांव की कविता चटर्जी कहती हैं कि यहां मौजूद मंदिरों में सर्वाधिक भगवान शंकर के हैं। कविता चटर्जी ने बीबीसी से कहा,
एखाने आछे आमादेर मेन मंदिर हलो मा मल्लिकार।
यहाँ पर हमारा जो मुख्य मंदिर है माँ मौलिक्षा का है, जो हमारे गांव की देवी हैं। इन मंदिरों के बीच हमारा काली मंदिर है, शिव मंदिर है। गांव में छह तरफ मंदिरों का समूह है। अभी यहाँ कुल 72 मंदिर हैं।
72 मंदिर।
वह साल 2015 की 26 जनवरी थी। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर झारखंड सरकार ने मलूटी के मंदिरों की झांकी प्रस्तुत की और उसे भारत में दूसरा पुरस्कार मिला। तब लोगों को पता चला कि मलूटी को मंदिरों का गांव कहते हैं। यह बंगाल की सीमा पर बसे झारखंड के दुमका जिले का हिस्सा है। उसी साल गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका आए तो उन्होंने मलूटी के मंदिरों के जीर्णोद्धार की रिमोट दबाकर शुरुआत की। तब लगा कि गाँव का कायाकल्प होगा और लोग खुश होंगे, लेकिन मलूटी के लोग नाराज हैं। इस गांव के उत्पल चौधरी कहते हैं कि जीर्णोद्धार के नाम पर मंदिरों के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की जा रही है।
देखिए यहाँ जो काम हो रहा है, हाँ, तो जो चीज लोग देखने के लिए आएगा उसका यदि वास्तविक रूप को बदल देगा तो क्या देखने का आएगा। और यहाँ जो काम हो रहा है ये बिल्कुल गलत काम। यहाँ तो चूना सुरपी वाला काम होना चाहिए और हो रहा है यहाँ बालू और सीमेंट छोर ये सब का यूज हो रहा है, इसका वास्तविक रूप भी बदल जा रहा है।
वही माधव चट्टोपाध्याय का आरोप है कि गिरने के कगार पर पहुंच चुके मंदिरों को छोड़कर उनकी मरम्मत की जा रही है, जो अपेक्षाकृत अच्छी हालत में है।
अभी जो होता है वो पुरानों छोड़ के नया नया जो है उसको करता है, ये हम लोग का हम लोग चाहते हैं इसको आगे करिए तो वो लोग वो आगे करता है होगा।
87 साल के गोपाल दास मुखर्जी पिछले 43 सालों से इन मंदिरों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मास्टर साहब के नाम से मशहूर गोपाल दास मुखर्जी पहले वायुसेना में थे। रिटायर होकर अपने गांव मलूटी लौटे तो उन्होंने मंदिरों को भारतीय पुरातत्व विभाग से संरक्षित कराने की पहल की। इसके लिए वे कई मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अफसरों से मिले। उनकी पहल पर ASI ने यहां आकर काम भी किया, लेकिन अब मंदिरों का जीर्णोद्धार का जिम्मा दूसरी संस्था को सौंपा गया है। मुखर्जी मानते हैं कि अगर ASI ने इनके संरक्षण का जिम्मा लिया होता तो मंदिरों का वास्तविक स्वरूप कायम रह पाता। गोपाल दास मुखर्जी ने BBC से कहा,
देखिए पैसा देते हैं सरकार और ठेकेदार देके काम करवाना माने बीच में से चला जाता है, बहुत काम भी ठीक नहीं होता है। इसलिए ASI इसके लिए अप्रोप्रिएट संस्था, ASI अगर काम करे तो काम अच्छा होगा ना। ये जो हमारा तो धरोहर, भारत का धरोहर है, ये हमारा मलूटी गांव का नहीं, झारखंड का नहीं है, ये भारत का धरोहर है।
दुनिया भर के धरोहरों पर काम करने वाली संस्था ग्लोबल हेरिटेज फंड ने मलूटी के मंदिरों को दुनिया के 12 सर्वाधिक लुप्तप्राय धरोहरों में शामिल किया है। इस श्रेणी में शामिल होने वाला यह भारत का इकलौता धरोहर है। इस बीच झारखंड सरकार मलूटी के मंदिरों को यूनेस्को के विश्व धरोहरों की सूची में शामिल कराने की कोशिश में लगी है। इन सब के बीच मलूटी के लोग अपनी जिंदगी के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं की तलाश कर रहे हैं। रवि प्रकाश, BBC के लिए मलूटी में।
श्रोताओं, आज गुरुवार है और आपको इंतजार होता है अपने पत्रों का, तो सुनिए आपकी राय।
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ स्टूडियो में मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और मेरे साथ हैं
सूर्यांशी पांडे
जी। तो शुरू करें चिट्ठियों का सिलसिला।
हाँ, तो राजेश जी, सबसे पहले हम खतों का सिलसिला शुरू करेंगे, जिसके अंदर पहला खत है लक्ष्मण दास शर्मा जी का, जो मंडलाना हरियाणा से लिखते हैं। और ये लिखते हैं कि बुधवार को दुनिया जहां में वात्सल्य राय द्वारा पाकिस्तान की मुद्रा पर जो प्रस्तुति की गई थी वो उन्हें बेहद पसंद आई है।
बहुत शुक्रिया। ये हमारे नियमित श्रोता हैं और नारनौल हरियाणा से चिट्ठी लिखते हैं। आपकी प्रशंसा हम वात्सल्य राय तक पहुंचा देंगे।
तो अगला खत है राम स्वरूप शर्मा जी का, जो कानपुर से लिखते हैं। और ये लिखते हैं कि वो आपका कार्यक्रम यानी कि बीबीसी का कार्यक्रम सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनकी एक शिकायत है। शिकायत ये है कि आपकी राय में श्रोताओं के पत्र बहुत कम शामिल होते हैं। वो चाहते हैं कि ये कार्यक्रम 10 मिनट का हो जाए।
देखिए, आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, आपको ये कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, अगर हम 10 मिनट तक चिट्ठियां ही सुनवाते रहेंगे तो कार्यक्रम कब करेंगे। तो ये एक संतुलन की बात है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठियां शामिल करें और अधिक से अधिक श्रोताओं की चिट्ठियां शामिल करें, नए पुराने हर तरह के श्रोता की चिट्ठी शामिल करें, शहर गाँव जहाँ से भी हों उनकी चिट्ठी शामिल करें। और देखिए, आज आपकी चिट्ठी शामिल हुई है,
भी हो गई है
जी।
अगर हम ईमेल पे थोड़ा हम जाना चाहेंगे राजेश जी, और ईमेल जो पहला आया है वो है डॉक्टर हेमंत कुमार का, और ये प्रेसिडेंट है प्रियदर्शनी रेडियो लिसनर्स क्लब के, जिन्होंने ये लिखा है कि जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं बीबीसी की और रिसेप्शन क्वालिटी है वो बेस्ट होती है फेसबुक पर। तो वेरी वेरी थैंक्स उन्होंने कहा है।
जी, बहुत शुक्रिया कि आप जो हमारी तकनीकी समस्या है उसका समाधान भी है और उस समाधान का आप फायदा उठा रहे हैं। हम अपने उन सभी श्रोताओं से जो हमें डिजिटल मीडियम पर सुन सकते हैं उनसे अनुरोध है कि बेहतर क्वालिटी के लिए वहां सुने, और जो लोग रेडियो पर सुनते हैं हम उनसे माफ़ी भी चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आवाज़ की क्वालिटी साफ हो, लेकिन जब नहीं होती है तो उसका हमें अफसोस होता है।
हाँ, अगला खत है, ये है पंजाब से, परमिंदर सिंह जी लिखते हैं भिवानीगढ़ से, और ये कहना चाहते हैं कि 21 साल से बीबीसी को सुनते आ रहे हैं, जब वो 21 साल के थे और अब वो 44 साल के हो गए हैं, और उन्हें बीबीसी की वो पुरानी सिग्नेचर ट्यून वापस चाहिए।
देखिए, वक्त बदलता है, वक्त के साथ ज़माने की रफ्तार बदलती है, ज़माने की धुन बदलती है, सिग्नेचर ट्यून भी बदलता है। मैं आपकी ये बात बिल्कुल समझ सकता हूँ कि जो किसी भी कार्यक्रम का सिग्नेचर ट्यून होता है उससे लोगों को एक जुड़ाव, एक लगाव हो जाता है, आप उसको मिस करते हैं, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदलनी भी चाहिए।
बिल्कुल। ये खत भेजा है असद अली ने, और ये रामपुर से लिखते हैं, उत्तर प्रदेश, और ये लिखते हैं कि इन्हें भी वसतुल्ला खान की जो डायरी है उसके अंदर से पन्ने से जो पाकिस्तान के ऊपर जो प्रस्तुति की गई थी, उनकी मुद्रा पर जो प्रस्तुति की गई थी, वो उन्हें बेहद पसंद आई।
बहुत शुक्रिया आपका, और हम चाहते हैं कि हम अपने श्रोताओं को चीन, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, भारत के पड़ोसी देश और दुनिया के सभी देशों के बारे में जितनी हो सके आसान भाषा में, हिंदी में रेडियो पर जानकारी दे सकें। आपको अच्छा लगा, आपका शुक्रिया।
ये अगला ईमेल है, ये अर्जुनदन चरण ने लिखा है। इन्होंने बताया कि ये अर्जुन दान चारण करमवास बाड़मेर राजस्थान से हैं
जी,
और ये लिखते हैं इटली के राजनीतिक संकट पर दुनिया जहां में अच्छा विश्लेषण किया गया, और कुलदीप को बधाई दी है उन्होंने इस बात के लिए।
बहुत शुक्रिया दीप मिश्रा तक ये बात पहुंचा दी जाएगी कि उनका कार्यक्रम बाड़मेर में पसंद किया गया। और यही मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हम कोशिश यही करते हैं कि दुनिया भर की जो जानकारी और समझदारी है वो आपको रेडियो पर हिंदी में आसान भाषा में आप तक पहुंचा सके।
बिल्कुल। और कुलदीप के एक और प्रशंसक हैं, उनका नाम है गौतम दत्ता किशनगंज से। ये लिखते हैं कि कुलदीप की दुनिया जहां जो इटली के शरणार्थियों से संबंधित थी अच्छी लगी, और ये समस्या अपने भारत में भी गंभीर रूप से है।
बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने खत लिखा, और जिनके खत आज शामिल नहीं हो सके उनसे माफ़ी के साथ अब पता बता दें ताकि आप आगे भी हमें खत लिखते रहें। डाक से पत्र भेजने का पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप ईमेल भेजना चाहें तो पता वही है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब बात आज की एक बड़ी खबर की। ये खबर भारत प्रशासित कश्मीर से है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर बातचीत की पेशकश को आगे रखा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि बात सभी से हो सकती है, लेकिन इसके लिए सही सोच जरूरी है। पूरी रिपोर्ट माजिद जहांगीर से।
बातचीत सबसे हो सकती है, बातचीत के लिए लाइक माइंडेड होना जरूरी नहीं है, लेकिन राइट माइंडेड होना जरूरी है।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने जम्मू कश्मीर के दो दिन के दौरे के दौरान गुरुवार को श्रीनगर के SKICC सेंटर में कश्मीर के अलगावादियों पर जोर देते हुए बताया कि कश्मीर के अलगावादी जम्मू कश्मीर में शांति बनाने के लिए बातचीत में शामिल हों। उन्होंने बताया कि बातचीत राइट माइंडेड लोगों से हो, न कि लाइक माइंडेड लोगों से। उन्होंने ये भी बताया कि हम हर किसी से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बातचीत शांति के लिए हो। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जिसके लिए भारत सरकार ने विशेष वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा को इस काम के लिए तैनात किया है। गृह मंत्री का कहना था कि विशेष वार्ताकार ने अभी तक गहरा बार जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया। उन्होंने बताया कि दिनेश्वर शर्मा कश्मीर सैर सपाटे के लिए नहीं आते हैं।
यहाँ तक बातचीत का सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव तय किया है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए तय किया है, जाएंगे सारे स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में सैर करने के लिए नहीं भेजा है।
रमजान सीज फेयर को बढ़ाने पर बात करते हुए उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद और राज्य की मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि किसी भी इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता है।
मैंने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन चल रहा है, बैठेंगे सीएम से चीफ मिनिस्टर से भी बात करेंगे, सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, लेकिन किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता।
उन्होंने पाकिस्तान का सीधा नाम लेते हुए बताया कि पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद को बंद करे।
पहले ही हम लोगों ने कहा सबसे बात करेंगे, लेकिन कम से कम हमारा पड़ोसी देश जो बैठा है पाकिस्तान, अपनी धरती से तो कम से कम आतंकवादी गतिविधियों को न होने दे।
कश्मीर के युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर के बच्चे बहुत हुनरमंद हैं और कुछ ताकतें उनको हिंसा और आग में धकेलना चाहती हैं।
क्या ये लोग ये चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे केवल आग और पत्थर का ही खेल खेलते रहे?
उन्होंने कहा कि कश्मीर के बच्चे सिर्फ कश्मीर के बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो भारत के भी बच्चे हैं। गौरतलब है कि अलगावादियों ने भारत सरकार की बातचीत की पेशकश पर कुछ दिन पहले बताया था कि भारत सरकार बातचीत के मुद्दे पर अपना पक्ष पहले साफ करें। भारत सरकार ने रमजान महीने के लिए कश्मीर में एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर रखी है। बीते 20 दिनों में सीज फायर की घोषणा के दौरान कश्मीर में कई सारे चरमपंथी हमले भी हो चुके हैं। कल गृह मंत्री जम्मू के आरएसपोरा का दौरा करेंगे। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
और बता दें कि नागपुर में आयोजित RSS के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का भाषण जारी है और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण का इंतजार है। मोहन भागवत ने कहा है कि प्रणब मुखर्जी के इस कार्यक्रम में आने पर विवाद उचित नहीं है। फैसल मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। एक छोटी टिप्पणी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से संघ की अपील है, संघ प्रमुख की, क्या आपको लगता है मौजूदा माहौल में उसका कोई असर होगा?
मौजूदा माहौल में असर नहीं होगा, और जो प्रणब मुखर्जी का जो वहाँ जो विजिट है उसको इतना इनोसेंट भी नहीं कहा जा सकता। एक तो जैसा आपने पहले भी जिक्र किया कि भारत का सपूत बताया गया, जिस तरह से KB हेडगवार को उन्होंने बताया, तो वो अपने आप में उस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल कहा है कि वो विजिटर्स बुक में ये भी लिख सकते थे कि वो एक अच्छे आदमी थे, मैं आया और मैंने यहाँ विजिट किया, लेकिन उन्होंने भारत का सपूत बताया, जिसको जाहिर है कि RSS अपनी तरह से पेश करने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात को देखिए कि जो संघ की जिस कार्यक्रम में गए हैं, ये उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है। यहाँ से जो प्रचारक निकलेंगे यही देश के अलग अलग हिस्से में जाएंगे, और जो जब कहा जाता है कि जो है वो BJP जो है कैडर ड्रिवन जो है वो पार्टी है, तो कल होके इनका सीधा सीधा सामना कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से होगा जो इनकी मुखालफत में है, तो ये उतना इनोसेंट नहीं है जितना
यानी बात निकलेगी तो दूर तलक तो जाएगी दूर वो तलक। क्या बोलते हैं देखते हैं। शुक्रिया फैजल साहब और संजय आपका भी। और चलते चलते मुख्य समाचार मानसी दास से।
BBC समाचार। भारत की जानी मानी पत्रकार बरखा दत्त ने कहा है कि उन्हें सरकार में मौजूद ताकतवर लोगों से धमकियां मिल रही हैं। दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने एक व्यक्ति हेनरी वेन ब्रेडा को अपने माता पिता और भाई की हत्या के आरोप में 3 बार आजीवन जेल की सजा सुनाई है। कीनिया में अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस सप्ताह मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए एक छोटे विमान का मलबा मिल गया है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे कपिल देव सिंह, फेसबुक प्रसारण में मदद की गुरप्रीत कौर ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक RSS के कार्यक्रम समेत तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।